ओरल हेल्थ की बात करें तो ये एक खूबसूरत मुस्कुराहट से अधिक और भी कुछ है। आपके मुंह की सुरक्षा और आपका स्वास्थ्य, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे शरीर पर। इसमें कोई शक नहीं कि दांतों की संभाल रखना ऑस्ट्रेलिया में काफी महंगा है, लेकिन इसकी कीमत को कम करने के उपाय भी हैं। तो आइए अब इसी पर एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग तो पब्लिक डेंटल केयर पा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को एक प्राइवेट प्रैक्टिस में ही जाना पड़ता है। कभी कभी तो उन्हें इंश्योरेंस से कुछ मदद मिलती है, नहीं तो वो अपनी जेब से ही खर्च करते हैं। डेंटल हेल्थ सर्विसेज विक्टोरिया की सीईओ डॉक्टर डेबरा कोल बताती हैं कि सामान्य तौर पर दांतों की संभाल, जैसे कि दांतों की सफाई, उसमें फिलिंग कराना, जांच कराना आदि मेडिकेयर से कवर नहीं होता।
Virtually nothing's covered by Medicare. There are very, very few things. It's really Medicare would cover things where you might be actually admitted into hospital for some sort of pathology, so that would be covered. But predominantly, most basic dental care wouldn't be covered by Medicare.
मेडिकेयर दांतों की उन सेवाओं के खर्च को कवर करता है जो आपकी सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब जब दांतों से संबंधित खर्च की बात आती है तो डेंटिस्ट पर ही निर्भर होता है कि खर्च कितना आ रहा है और आप रहते कहां पर हैं। ऑस्ट्रेलियन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार नॉर्दर्न टेरिटरी में दांतों से संबंधित इलाज सबसे महंगा है और सबसे सस्ता है तस्मानिया में। एक सामान्य सी जांच जिसमें दांतों की सफाई, स्केल और फ्लोराइड ट्रीटमेंट वगैरह है, इसमें कोई $200 के आसपास खर्च आना चाहिए। अब सही डेंटिस्ट कौन सा होगा, इसके लिए कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप चॉइस के प्रवक्ता टॉम गॉडफ्रे कहते हैं कि आपको थोड़ी पूछताछ, डॉक्टर की फीस वगैरह जानकर ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए।
So if you don't have insurance, the costs can vary wildly from dentist to dentist. So it's important that if you are on a budget, ask your dentist to explain to you the costs before they commit to the procedure. And that way, it'll be easier for you to budget.
Dentistry school में appointment लेने से आप कुछ पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि उनकी फीस private practices की अपेक्षाकृत कम होती है। टॉम गॉडफ्रे कहते हैं कि एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ खर्च, यानी फीस तो बचती है लेकिन पूरा खर्च नहीं निकलता।
You need to remember that on average, private health insurance customers claim back only around half of the dental fees. So even though you take out what we see as a form of budgeting tool within the extras policy for dental cover, you will still have out-of-pocket expenses.
वैसे टॉम गॉडफ्रे सलाह देते हैं कि अपनी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ अतिरिक्त कवर लेना तभी ठीक है अगर आप ऑप्टिकल फिजियोथेरेपी आदि के लिए उसका प्रयोग कर रहे हों। वो कहते हैं कि सिर्फ दांतों के लिए एक्स्ट्रा कवर लेने से शायद ठीक रहेगा कि आप वो फीस स्वयं ही दे दें। अब डेंटल केयर बड़ों के लिए तो काफ़ी महंगी है, लेकिन बच्चों के लिए उतनी महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि सभी ऑस्ट्रेलियन बच्चों को सुविधा है सरकार की चाइल्ड डेंटल बेनिफिट स्कीम से, और ये मेडिकेयर में ही है।
All children until they they're 17, so before they turn 18, are actually eligible for care if they fit within a certain family tax benefit. But most people that would come in would fit into that category.
बच्चों के अभिभावकों को प्रति बच्चा $1,000 मिलता है, जो डेंटल केयर के लिए 2 साल तक खर्च किया जा सकता है। डेबरा कोल का कहना है कि पब्लिक डेंटल केयर सिर्फ एक बहुत ही कम लोगों के लिए उपलब्ध है।
Every state has slightly different eligibility criteria, but they are predominantly if you've got a healthcare card or a pension card, you are eligible. In Victoria, they also go if you're a refugee and asylum seeker. We will provide you with care as well. In other states, it's a little bit different, but predominantly, most of them would all provide emergency care.
सुश्री कोल बताती हैं कि डेंटल हेल्थ सर्विसेज विक्टोरिया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है ताकि शरणार्थियों और शरणार्थी प्रार्थियों को, जो कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उन्हें मुफ्त और वहन करने योग्य डेंटल केयर की सुविधा दी जा सके।
It's very important because a lot of people that have been refugees or asylum seekers have often been dislocated from their original home for quite long periods of time, quite often, and they've had, you know, often poor nutrition, they've had no access to health services and oral health services, and often they've got, some of their diet is very poor because that's all they can access, and so we quite often find that their oral health has just not been looked after for a long time.
शरणार्थियों और शरणार्थी प्रार्थियों को अक्सर दांतों संबंधित बीमारियां या तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि वो एक अत्याचार की वेदना से गुजर चुके होते हैं।
The main thing we want to do is to encourage people that are from a refugee and asylum seeker to seek out early care, and at least if we can get people into preventive programs so that we can at least not let them get worse than situation they are in.
इस बारे में, यानी पब्लिक डेंटल केयर सर्विसेज के लिए, अपने राज्य या टेरिटरी के हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।